بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے عمران سیریز کا ناول سی ایگل ریکارڈ کر رہے ہیں. اس ناول کے مصنف مظہر کلیم ہیں. یہ ناول آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں: 03212138225, 03002919600, یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org www.qurtaba.org. اب سنتے ہیں پارٹ نمبر 1. عمران چادر اوڑھے آرام کرسی پر نیم دراز تھا. شیو بڑھی ہوئی تھی اور سر پر لیٹر باکس نما ٹوپی پہنی ہوئی تھی. چہرے پر اضمحلال طاری تھا اور آنکھیں بند تھی. اس کے لباس، بیٹھنے کا انداز اور چہرے پر موجود تاثرات سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ بیماری کے ہاتھوں خاصا نڈھال ہو چکا ہے. سامنے میز پر رنگ برنگی شیشیوں اور بلسٹر پیکنگ کے پیکٹ بھی رکھے ہوئے تھے. ایک طرف چائے کا جگ بھی موجود تھا، ساتھ ہی چائے کا ایک خصوصی طور پر بڑا سا کپ بھی موجود تھا. یوں دکھائی دے رہا تھا کہ میز پر باقاعدہ میڈیکل سٹور کھلا ہوا ہے. عمران کو کل اچانک شدید نزلہ ہوا اور پھر رات کو بخار ہو گیا. چونکہ ان دنوں موسم تبدیل ہو رہا تھا، اس لیے نزلہ، زکام اور بخار کی شکایات عام تھیں، لیکن عمران کی حالت اور اس کا انداز دیکھ کر تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے دنیا کی کوئی ایسی خوفناک بیماری ہو گئی ہو جس کا ابھی تک علاج بھی دریافت نہیں ہو سکا. اور کل ہی سے سلیمان کی بھی کم وقتی آئی ہوئی تھی. ہر 10 منٹ بعد عمران ایک نئی دوا لکھ کر سلیمان کو دیتا اور سلیمان کو مجبوراً مارکیٹ جا کر وہ دوا لانی پڑتی اور پھر وہ دوا میز پر پڑی ہوئی دوسری دواؤں کے ساتھ سج جاتی اور پھر 10-15 منٹ بعد ایک نئی دوا لے آنے کا حکم صادر کر دیا جاتا. چونکہ عمران کی حالت ایسی تھی کہ سلیمان کو بھی اس کی بیماری کی فکر پڑی ہوئی تھی اور پھر عمران بیماری کی وجہ سے بے حد چڑچڑا اور سنجیدہ ہو رہا تھا، اس لیے سلیمان کان دبائے اس کے احکامات پر مسلسل عمل کر رہا تھا. اس نے کئی بار ڈاکٹر کو بلانے یا عمران کو ہسپتال پہنچانے کی دبے لفظوں میں بات کی تھی، لیکن عمران نے اسے انتہائی سختی سے جھڑک دیا تھا اور سلیمان مجبوراً خاموش ہو گیا تھا. اس وقت بھی وہ عمران کی لکھی ہوئی ایک نئی دوا لینے مارکیٹ گیا ہوا تھا، اس لیے عمران اس کے انتظار میں آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سائڈ کرسی پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی. چونکہ میز پر ٹیلی فون رکھنے کی جگہ باقی نہ بچی تھی، اسی لیے سلیمان نے اسے کرسی پر رکھ دیا تھا. کئی بار گھنٹی بجنے کے باوجود عمران ویسے ہی آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، لیکن جب گھنٹی مسلسل بجتی رہی تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، پھر آہستہ آہستہ اس انداز میں ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے کارٹون فلم میں سلو موشن کارٹون دکھائے جاتے ہیں. کچھ دیر تک اس کا ہاتھ ریسیور پر اس طرح رکھا رہا جیسے اسے ریسیور اٹھانے کی ہمت ہی نہ ہو رہی ہو یا اس کے جسم میں ریسیور اٹھانے کی طاقت ہی نہ رہی ہو. پھر اس نے آہستہ سے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر سلو موشن میں اس کا ہاتھ واپس آیا. ہیلو، عمران نے لفظ کو اس قدر سلو موشن میں ادا کیا کہ لفظ ٹوٹ کر نہ جانے کہاں تک پھسلتا چلا گیا. کون بول رہا ہے؟ عمران کہاں ہے؟ دوسری طرف سے عمران کی اما بی کی حیرت بھری آواز سنائی دی تو عمران کے جسم کو اس طرح زوردار جھٹکا لگا جیسے اس کے جسم میں اچانک لاکھوں وولٹیج الیکٹرک کرنٹ دوڑ گیا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بی، میں عمران بول رہا ہوں، آپ کیسی ہیں؟ عمران نے انتہائی چست لیکن انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا. اس بار اس نے فقرہ اس انداز میں ادا کیا تھا جیسے اس سے زیادہ چست آدمی شاید پوری دنیا میں ہی نہ ہو. وعلیکم السلام، پہلے یہ کس نے فون اٹھایا تھا؟ اما بی نے اسی طرح غصے لہجے میں کہا. اما بی، فون تو میں نے ہی اٹھایا تھا، لیکن شاید فون کی تاروں میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی، عمران نے بہانہ بناتے ہوئے کہا. اچھا سنو، سریا اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوئی ہے اور وہ تم سے ملنے تمہارے فلیٹ پر آنا چاہتے تھے، لیکن میں نے اس لیے روک دیا کہ مجھے سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہوتی ہیں کیونکہ مجھے بھی ظاہر ہے ساتھ ہی آنا پڑتا، اس لیے تم فوراً کوٹھی آ جاؤ، انہوں نے 2 گھنٹے بعد واپس جانا ہے، اما بی نے کہا. اما بی، سریا اور اس کا شوہر مہمان تو نہیں ہے، ये तो अपना ही घर है, वो आते जाते रहते हैं, इसलिए आज ना सही फिर मिल लूंगा, इमरान ने कोठी जाने से गुरेज करते हुए कहा। क्या मतलब? क्या तुम अब बहन और बहनोई से मिलने से भी इनकार कर रहे हो? अम्मा बी ने यकलख्त इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अरे नहीं अम्मा बी, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बहन और बहनोई से ना मिलूं? दरअसल मैं इस वक्त खासा मसरूफ हूँ, इमरान ने कहा। क्या मसरूफियत है मुझे बताओ, फौरन बताओ। ऐसी कौन सी मसरूफियत है कि तुम माँ बहन और बहनोई से भी नहीं मिल सकते हो? अम्मा बी का पारा और ज्यादा चढ़ गया था। ठीक है अम्मा बी, मैं एयरपोर्ट पर उनसे मिल लूंगा। कौन सी फ्लाइट पर जा रहे हैं? इमरान ने कहा। 2 घंटे बाद जो जहाज जा रहा है। लेकिन आखिर तुम माँ के घर आने से क्यों इनकार कर रहे हो? ठीक है, मैं खुद ही आ रही हूँ, फिर मैं देखूंगी कि तुम्हारी ऐसी कौन सी मसरूफियत है, अम्मा बी ने और ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अम्मा बी, आपको सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं खुद ही आ रहा हूँ, इमरान आखिरकार हथियार डालते हुए कहने लगा। जाहिर है अब उसके पास इसके सिवा और कोई चारा भी ना था। ठीक है, जल्दी आओ फौरन, अम्मा बी ने इस बार नर्म लहजे में कहा, और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया और फिर वो तेजी से उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी जल्दी शेव बनाई, मुंह धोया और फिर लिबास तब्दील करके वो जब ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो पहले की तरह हशाश बशाश और चुस्त इमरान दिखाई दे रहा था। उसी लम्हे उसे फ्लैट का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि आने वाला सुलेमान है। सुलेमान जल्दी आओ, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। जी साहब, सुलेमान ने राहदारी से ही जवाब देते हुए कहा और फिर वो जैसे ही सिटिंग रूम के दरवाजे पर पहुंचा तो बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। ये तुमने मेज पर क्या भर रखा है? कहाँ से उठा लाए हो इतनी रंग बिरंगी दवाएं? उठाओ इन्हें और ले जाओ, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। यह आपको क्या हो गया है? क्या इन खुश्क दवाओं का दिमाग पर तो असर नहीं हो गया? सुलेमान ने कहा। मेरे नहीं, तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया है। तुम्हें मालूम है ना कि डॉक्टर के नुस्खे के बगैर अपने तौर पर दवाएं खरीद खरीद कर इलाज करना कितना बड़ा रिस्क होता है, और तुम इसके बावजूद अपनी मर्जी से जाकर न जाने कौन कौन सी दवाएं खरीद लाते हो। मैं कोठी जा रहा हूँ, अम्मा बी का फोन आया था, सुरैया और उसका शोहर आए हुए हैं, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अच्छा, तो इस तरह इलाज हुआ है? मुझसे तो वाकई गलती हो गई थी, जो मैंने मार्केट के चक्कर लगा लगा कर खुद को बीमार कर लिया। मुझे पहले ही बड़ी बेगम साहिबा को फोन कर देना चाहिए था, सुलेमान ने एक तरफ हटते हुए कहा। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैंने अपने लिए तुम्हें मार्केट के चक्कर लगवाए हैं? कभी कद्दे आदम आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखो तो पता चले कि अल्लम गल्लम खाने और मुसलसल बेकार रहने से तुम्हारे जिस्म पर किस कदर गोश्त चढ़ गया है। चलो इस तरह कुछ तो वजन हल्का होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। ठीक है, मैं बड़ी बेगम साहिबा को फोन करके बता देता हूँ कि आपकी क्या हालत थी और अब आप उनसे छुपाने के लिए जबरदस्ती अपने आप को तंदुरुस्त जाहिर कर रहे हैं और फिर वो खुद ही आपसे आपका दुरुस्त इलाज कर लेंगी, सुलेमान ने कहा। तो इमरान तेजी से, अरे अरे ये क्या कह रहे हो? प्लीज आगा सुलेमान पाशा साहब, ये जुल्म ना करना, वरना अम्मा जी को तो तुम जानते ही हो, उन्होंने न जाने किस किस हकीम के जोशांदे बना बना कर मुझे जबरदस्ती पिला देने हैं और फिर न जाने कितनी माजूने भी साथ कहानी पड़ेंगी। प्लीज, इमरान ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। उसे मालूम था कि अम्मा भी एलोपैथिक दवाओं से एलर्जिक हैं, उनका एतमाद हिकमत पर है और फिर उनके पास कुछ ऐसे पुराने नुस्खे मौजूद हैं जो नस्ल दर नस्ल होते हुए उन तक पहुंचे हैं, इसलिए इमरान की वाकई शामत आ जानी थी। ये ठीक है कि उसे नजला और हल्का सा बुखार था और बाकी जो कुछ था सिर्फ सुलेमान को तंग करने का ड्रामा था, और अगर अम्मा बी का फोन ना आ जाता तो वो जाने के बजाय अभी सुलेमान को कितना तंग और जिज करता। लेकिन अब सुलेमान ने धमकी देकर उसको वाकई हवास बागता कर दिया था। उसे मालूम था कि अगर सुलेमान ने वाकई अम्मा बी को फोन करके इमरान की कैफियत बता दी तो फिर ये सारा ड्रामा उसके ऐसे गले पड़ जाएगा कि ना जायमान दन और ना पाए रफ्तन वाला सिलसिला हो जाएगा। मेरी टांगे शदीद दर्द कर रही हैं और जाहिर है अब मुझे उनकी मालिश करानी होगी, और चूंकि मैं बेहद थक गया हूँ इसलिए लामहाला अब मुझसे खाना भी न पक सकेगा और मुझे किसी अच्छे से होटल में जाकर खाना खाना पड़ेगा, सुलेमान ने फौरन ही अपना ड्रामा शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर मालिश कराओ, बल्कि टांगों के साथ साथ सर की भी मालिश करा लेना और खाना खुद खाने के साथ साथ मेरे लिए भी ले आना, इमरान ने सुलेमान का मतलब समझते हुए फौरन कहा। बहुत शुक्रिया साहब, आपने इजाजत दे दी है, मैं अब अम्मा भी को फोन करके उन्हें सारी तफसील बता देता हूँ। वो बेहद शफीक खातून है, वो फौरन मुझे ये सब कुछ कराने के लिए रकम दे देंगी, सुलेमान ने जवाब दिया। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। अरे अरे, क्या मतलब? अब मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि 50-60 रुपए भी ना दे सकूँ? इमरान ने फौरन ही जेब में हाथ डालते हुए कहा। 50-60 हजार रुपए सिर्फ? ये क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब है कि आपको वाकई फ्लैट से बाहर की दुनिया की खबर ही नहीं है। 50-60 हजार रुपए में होता क्या है? आपको मालूम है कि मसाज सेंटर वाले सर और टांगों के मसाज करने की क्या फीस वसूल करते हैं? उन्हें वो भारी तनख्वाहें देते हैं और फिर उनका अपना खर्चा भी। मसाज की मशीनें बहुत कीमती होती हैं, फिर बिजली और फोन के अखराजात, फिर आजकल किराए भी बहुत बढ़ गए हैं। और आप कह रहे हैं कि 50-60 हजार में ये सब कुछ कर लेने के साथ साथ मैं किसी अच्छे से होटल में खाना भी खा लूं और आपके लिए भी ले आऊं, सुलेमान ने कहा। तो इमरान की आंखें हैरत से फैल कर मुहावरतन नहीं हकीकतन उसके कानों तक पहुंच गईं। मगर तुम तो मालिश की बात कर रहे थे। वो तो रंग बरंगी तेल की बोतलें छनकाते फुटपाथों पर फिरते होते हैं मालशी। वो 10-12 रुपए में मालिश कर देते होंगे और खाना भी बादशाह के होटल से 10-12 रुपए में तुम खा सकते हो। चलो मेरे लिए ना लाना, मैं अम्मा भी के साथ खा लूंगा। चलो अब तो ठीक है, इमरान ने कहा। तो आपका मतलब है कि ऑल पाकेशिया बावर्ची एसोसिएशन का सदर अब ये सब कुछ करेगा? फिर ठीक है, आप बेशक ना दे रकम, मैं बड़ी बेगम साहिबा से खुद ही ले लूंगा। आप 50-60 हजार बचा लें। हद हो गई कंजूसी की, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे अरे, मैंने 50-60 रुपए कहे हैं, 50-60 हजार नहीं कहे, इमरान ने कहा। फिर तो आपसे बात करना ही फजूल है। आप तशरीफ ले जाएं, बड़ी बेगम साहिबा इंतजार कर रही होंगी। वैसे मैंने उन्हें कह देता हूँ कि आप यहाँ से चल पड़े हैं, सुलेमान ने कहा और वापस मुड़ गया। अरे अरे ठहरो, या अल्लाह, किस ब्लैकमेलर से वास्ता पड़ गया है? अच्छा सुनो, वो मेरे नीले से सूट की जेब में 2000 रुपए हैं, ले लो। चलो अब तो खुश हो, इमरान ने कहा। नीले सूट की बाई जेब में या अंदरूनी जेब में? सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या क्या मतलब? क्या तुम पहले ही तलाशी ले चुके हो? इमरान ने उछलते हुए कहा। मुझे उन सूटों की रोजाना सफाई करनी पड़ती है और आजकल करेंसी नोट इस कदर गंदे हो गए हैं कि जी चाहता है कि उन्हें बाकायदा ड्राई क्लीन कराया जाए, इसलिए उनकी जेबों में मौजूद हिफ्जान सेहत के उसूलों के खिलाफ है, सुलेमान ने जवाब दिया। तो क्या मतलब? वो अंदरूनी जेब में तो 2 लाख रुपए रखे थे। वो तो मैंने मुश्किल वक्त के लिए रखे हुए थे, इमरान ने हकलाते हुए कहा। आपकी बीमारी से ज्यादा मुश्किल वक्त कौन सा हो सकता है? ये आपने जो दवाएं मंगाई हैं, क्या ये मुफ्त मिलती हैं? अभी कोई खैराती मेडिकल स्टोर वजूद में नहीं आया है और आप तो रोजाना अखबार पढ़ते ही रहते हैं, जिनमें दवाओं की रोजाना बढ़ती हुई कीमतों के बारे में खबरें आती रहती हैं, इसलिए 2 लाख रुपए की क्या हैसियत है, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ठीक है, कर दो अम्मा भी को फोन, मैं वहीं जा रहा हूँ। जब वो मुझे देखेंगी तो उन्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, और ये तो तुम्हें मालूम ही है कि झूठ से उन्हें किस कदर नफरत है, इमरान ने एक और पहलू पर बात करते हुए कहा। मैं उन्हें कह दूंगा कि आपका हाथ पकड़ कर देख लें, उन्हें खुद ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। आप जाएं, सुलेमान भला इतनी आसानी से कहां काबू में आने वाला था? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बुखार तो है लेकिन बहुत हल्का है, और हल्का फुल्का बुखार तो बहरहाल इस मौसम का मेवा है, इमरान ने कहा। वो इंतहाई शफीक माँ है और आप उनके इकलौते बेटे हैं, इसलिए हल्का बुखार उनके लिए तेज बुखार खुद ब खुद बन जाएगा, सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा। या अल्लाह, इस कदर सर्दो गर्म चशीदा बावर्ची तुमने मेरे ही नसीब में लिखा था, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने कोट के अंदरूनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर सुलेमान की तरफ बढ़ा दी। ये लो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? बदमजा जोशांदा पीने से तो बेहतर ही है कि आदमी खाली हाथ रह जाए, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इसका मतलब है कि मुझे सफाई का मयार ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा, वरना इस कदर गंदे करेंसी नोट आपकी जेबों में रह जाते हैं, सुलेमान ने कहा और फिर तेजी से मुड़ गया। सिर्फ अपने दिल की सफाई करा लो ताकि इसमें मौजूद दौलत की हविस निकल जाए, यही काफी है, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नाराक के सबसे मशहूर होटल नाराक लाइन के डांसिंग हॉल में इस कदर रश था कि डांस करने वाले जोड़ों को खुलकर स्टेप लेने की भी जगह नहीं मिल रही थी। अलबत्ता डांसिंग हॉल की साइडों में मौजूद मेजों और कुर्सियों में से अक्सर सीटें खाली थीं, ایسے ہی ایک سیٹ پر ایک لمبے قد اور چوڑے شانوں والا خوبصورت کریمی نوجوان جس کے سنہرے بال اس کے کاندھوں تک تھے انتہائی جدید تراش خراش کا سوٹ پہنے بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا۔ اپنے اسٹائل اور انداز سے وہ ہالی ووڈ کا کوئی ہیرو لگ رہا تھا۔ بے شمار لڑکیوں نے اسے ڈانس کی دعوت دی تھی لیکن اس نے بڑے مہذب انداز میں معذرت کر لی تھی۔ البتہ وہ پوری دلچسپی سے ڈانس کرتے ہوئے جوڑوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک ویٹریس اس کے قریب آ کر رکی تو نوجوان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مسٹر کراؤن آپ کی کال ہے، ویٹریس نے انتہائی دل فریب انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑے ہوئے کارڈلیس فون پیس کو اس نے میز پر رکھا، سر جھکایا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ نوجوان نے فون پیس اٹھایا اور اسے آن کر کے کان سے لگا لیا۔ یس کراؤن بول رہا ہوں، کراؤن نے کہا۔ اسپیشل کال، دوسری طرف سے ایک مشینی آواز سنائی دی اور رابطہ ختم ہو گیا تو کراؤن بے اختیار چونک کر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے کرسی کی سیٹ میں اچانک نوکدار کانٹے نکل آئے ہوں۔ اس نے جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر فون پیس کے نیچے رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی شاندار اور نئے ماڈل کی قیمتی کار ناراض کی سڑکوں پر خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسلسل اور خاصی تیز ڈرائیونگ کے بعد وہ اس رہائشی پلازا میں داخل ہوا جس میں اس کی رہائش گاہ تھی۔ کار اس نے مخصوص جگہ پر روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندرونی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے کار لاک کرنے کی بھی ضرورت نہ سمجھی تھی کیونکہ یہاں کاروں کی مخصوص حفاظت کی جاتی تھی، اس لیے اسے معلوم تھا کہ کار لاک نہ ہونے کے باوجود اسے چوری نہ کیا جا سکے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لفٹ کے ذریعے دوسری منزل پر واقع اپنے لگژری فلیٹ کے دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے جیب سے چابی نکالی اور لاک کھول کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ لگژری فلیٹ ساؤنڈ پروف تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر تیزی سے ایک کمرے میں پہنچ کر اس نے سپاٹ دیوار پر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر اسے دبایا اور پھر اسے ہٹا کر اس نے اسی جگہ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر اسے دبایا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے پھٹ کر سائڈوں میں ہو گئی اور کراؤن تیزی سے اندر داخل ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دیوار اس کے عقب میں خود بخود برابر ہو گئی تھی۔ کمرے کی دیوار میں ایک الماری موجود تھی۔ کراؤن نے الماری کھولی تو اندر ایک چھوٹی سی مشین موجود تھی جس میں اسکرین تھی۔ کراؤن نے مشین کے مختلف بٹن دبائے تو اسکرین روشن ہو گئی اور اس پر چند لمحوں تک آڑی ترچی لکیریں نمودار ہوتی رہی اور پھر یہ لکیریں مل کر ایک منظر میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ انتہائی پرشور سمندر کا منظر تھا جس میں لہریں تیزی سے اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ منظر نمودار ہوتے ہی کراؤن نے ایک سرخ رنگ کا بڑا سا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، C11 کالنگ سی سیکشن ہیڈ کوارٹر، کراؤن نے کہا۔ یس سی سیکشن ہیڈ کوارٹر اٹینڈنگ یو، اسپیشل کوڈ دہراؤ۔ مشین سے ایک کھڑکھڑاتی ہوئی مشینی آواز سنائی دی۔ CR1، کراؤن نے جواب دیا۔ اوکے، C1 کے جواب کا انتظار کرو، اسی مشینی آواز نے کہا تو کراؤن نے مشین کے دوسرے کونے میں موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو کراؤن کالنگ باس، کراؤن نے کہا۔ C1 اٹینڈنگ یو کراؤن، فون نمبر نوٹ کرو اور اس پر کال کرو، اس بار ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ خاصا نرم تھا اور پھر ایک فون نمبر بتا دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی مشین خود بخود آف ہو گئی۔ تو کراؤن نے مشین کے کئی بٹن پریس کیے اور سائیڈ میں پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے وہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو C1 نے بتائے تھے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی C1 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ کراؤن بول رہا ہوں باس، کراؤن نے کہا۔ کراؤن، تمہارے لیے ایک مشن ہے جسے تم نے پاکیشیا میں مکمل کرنا ہے، لیکن یہ مشن اس انداز میں مکمل ہونا چاہیے کہ نہ اس کا علم وہاں کی سیکرٹ سروس کو ہو سکے اور نہ ہی حکومت کو، C1 نے کہا۔ یس باس، ایسا ہی ہوگا، کراؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پاکیشیا نے ایک خصوصی ساخت کی آبدوز تیار کی ہے۔ یہ ایسی آبدوز ہے کہ اس جیسی آبدوز ابھی اکرینیا جیسی سپر پاور بھی ایجاد نہیں کر سکی۔ یہ ایک لحاظ سے مستقبل کی آبدوز ہے۔ اسے پاکیشیا والوں نے انتہائی خفیہ رکھا ہوا ہے۔ اس کا کوڈ نام انہوں نے سی ایگل رکھا ہے اور اسے انتہائی حفاظت میں رکھا گیا ہے اور اس کی اس قدر سخت نگرانی کی جاتی ہے کہ شاید اس قدر سخت نگرانی وہ اپنے ایٹمی مراکز کی بھی نہ کرتے ہوں گے، لیکن بلیک تھنڈر سے یہ سب کچھ پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے بلیک تھنڈر نے اپنے خصوصی مشینری کی مدد سے ان تمام حفاظتی انتظامات کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ یہ تفصیلات ابھی تمہارے پاس پہنچ جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس خصوصی ساخت کی آبدوز کی مشینری کو آپریٹ کرنے اور اسے چلا کر سی سیکشن کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچانے کے بارے میں تمام تفصیلی ہدایات بھی تمہیں مل جائیں گی۔ लेकिन ये सब कुछ तुमने जहन नशीन करने के बाद उन्हें जला देना है। इसके बाद तुमने ये मिशन मुकम्मल करना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ 2 रोज दिए जा रहे हैं, सीवन ने तफसील से बात करते हुए कहा। अरसा तो काफी है बॉस, लेकिन आपकी पहली हिदायत के मुताबिक ऐसा कैसे होगा? जाहिर है ये आप दोस्त जब अगवा कर ली जाएगी तो उसका इल्म हुकूमत को तो बहरहाल हो ही जाएगा, और फिर हो सकता है कि हुकूमत उसे तलाश करने और उसको वापस लेने के लिए सीक्रेट सर्विस की खिदमत हासिल करे, क्योंकि पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के बारे में सब जानते हैं कि वो इंतहाई फाल सर्विस है, क्राउन ने कहा। मेरी इन हिदायत का मकसद ये था कि हुकूमत और पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस को ये किसी तरह भी मालूम न हो सके कि ये मिशन ब्लैक थंडर ने मुकम्मल किया है, क्योंकि मुझे इस मिशन की इजाजत लेने के लिए मैन हेडक्वार्टर से न जाने कितने तवील मुजाकरात करने पड़े हैं। मैन हेडक्वार्टर ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मिशन से तमाम सेक्शन हेडक्वार्टर को सख्ती से मना कर रखा है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाला अली इमरान मैन हेडक्वार्टर की सेफ लिस्ट में है, और दूसरा उस पर धमकी दे रखी है कि अब अगर किसी भी सेक्शन हेडक्वार्टर ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिशन मुकम्मल किया तो फिर वो उस सेक्शन हेडक्वार्टर के खिलाफ काम करके उसे तबाह कर देगा। और इमरान के बारे में मैन हेडक्वार्टर में यही समझा जाता है कि वो अपनी धमकी पर अमल करने का अहल है। इससे पहले उसने ब्लैक थंडर के इंतहाई टॉप सुपर और गोल्डन एजेंटों के खिलाफ मिशन कामयाबी से मुकम्मल किए हैं, और ये सब टॉप सुपर और गोल्डन एजेंट उसे शिकस्त खा गए थे। लेकिन उसके साथ साथ मैन हेडक्वार्टर इस खसूसी साख की आपदोज में भी दिलचस्पी ले रहा है। उसकी राय थी कि बराह रास्त ब्लैक थंडर को इस्तेमाल किए बगैर किसी प्राइवेट तंजीम की खिदमत हासिल करके उसे हासिल किया जाए, ताकि ब्लैक थंडर का नाम सामने न आए। लेकिन फिर ये आइडिया इसलिए ड्रॉप कर दिया गया कि इस तरह इस आपदोज के बारे में सुपर पावर्स को भी इल्म हो सकता है। चुनाचा मुझे मैन हेडक्वार्टर को ये गारंटी देनी पड़ी कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को किसी तरह भी इल्म नहीं हो सकेगा कि इस मिशन पर ब्लैक थंडर ने काम किया है, और आपदोज भी सेक्शन हेडक्वार्टर पहुंच जाएगी, जिस पर उन्होंने आखिरकार इजाजत दे दी, और मैंने इस अहम तरीन मिशन के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है, सीवन ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है बॉस, आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। और अगर इमरान को या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को फर्ज किया किसी तरह मालूम भी हो जाए तो उसे सेक्शन हेडक्वार्टर के बारे में कभी मालूम न हो सकेगा, क्राउन ने कहा। ओके, विश यू गुड लक, दूसरी तरफ से कहा गया तो क्राउन ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखा और फिर अलमारी बंद करके वो वापस मुड़ गया। इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक साइंसी मैगजीन के मुताले में मसरूफ था। सुलेमान मार्केट गया हुआ था, इसके बावजूद चाय की तलब के इमरान खामोश बैठा मुसलसल मुताला करने पर मजबूर था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। इमरान ने रिसाले पर से नजरें हटाए बगैर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और उसे कान से लगा लिया। अली इमरान, MSc, DSc, ऑक्सन, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जूलिया बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज सुनाई दी। जी फरमाइए, लेकिन मुख्तसर बात कीजिएगा, मैं इंतहाई मसरूफ हूँ इसलिए ज्यादा वक्त न दे सकूंगा, इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। अलबत्ता उसका लहजा पहले से ज्यादा खुश्क हो गया था। क्या मसरूफियत है तुम्हें, दूसरी तरफ से काट खाने वाले लहजे में पूछा गया। मैं एक साइंसी मजमून पढ़ रहा हूँ जिसमें ये बताया गया है कि खवातीन के ज्यादा बोलने की साइंसी वजूहत क्या है, और सबसे बुनियादी वजह ये बताई गई है कि मर्द औरतों को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते हैं, खास तौर पर मुतरन्नुम आवाज की मालिक खवातीन को, इसलिए वो खवातीन की हौसला अफजाई करते हैं। और आपकी तो आवाज भी मुतरन्नुम नहीं है, और मैं आपकी हौसला अफजाई भी नहीं करना चाहता, इसलिए माफ फरमाइए, इमरान ने उसी तरह खुश्क लहजे में कहा। मैं खुद आ रही हूँ तुम्हारी हौसला अफजाई करने के लिए, दूसरी तरफ से इंतहाई झल्लाए हुए लहजे में कहा गया, और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया, लेकिन उसकी नजरें उसी तरह रिसाले पर जमी रही। लेकिन चंद लम्हों बाद फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसाला बंद करके मेज पर रख दिया। वैसे भी जो मजमून वो पढ़ रहा था वो मुकम्मल हो चुका था, और चूंकि अब चाय के बगैर उसे दूसरा मजमून पढ़ने की हिम्मत ना हो रही थी, इसलिए उसने रिसाला ही बंद करके रख दिया था। फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। उसे यकीन था कि जूलिया का ही फोन होगा, क्योंकि जूलिया ने उस वक्त गुस्से के आलम में फोन बंद कर दिया था और खुद आने का ऐलान कर दिया था। लेकिन इतनी बात तो वो भी जानता था कि जूलिया दानिश्ता उसके फ्लैट में कम आती थी, और अगर आती है तो अपने साथ सीक्रेट सर्विस के किसी न किसी मेंबर को ही लेकर आती है, क्योंकि अब जूलिया सिवाय रंग रूप और नकुश के जहनी और कल्बी तौर पर मुकम्मल मशरकी लड़की के रूप में ढल चुकी थी। अली इमरान MSc DSc ऑक्शन। इमरान ने जानबूझकर खुश्क और संजीदा लहजे में कहा, सुल्तान बोल रहा हूँ इमरान, एक इंतहाई अहम मसला सामने आ गया है, फौरन मेरे ऑफिस में पहुंचो। फौरन, सर सुल्तान ने रस्मी सलाम दुआ के बाद तेज लहजे में कहा और रब्ता खत्म कर दिया। इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया, वो समझ गया था कि वाकई कोई हंगामी मसला होगा, इसलिए सर सुल्तान ने जानबूझकर रिसीवर रख दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इमरान ने बाज नहीं आना और वो जाहिर है मजीद वक्त न दे सकते होंगे। उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। X2, रब्ता कायम होते ही Black 0 की आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ ताहिर, सर सुल्तान का भी फोन आया है, किसी अहम मसले के सिलसिले में उन्होंने मुझे फौरन कॉल किया है, लेकिन मेरा मसला यह है कि जूलिया ने भी अभी मुझे फोन किया था कि वो मेरे फ्लैट पर मुझसे लड़ने आ रही है, इसलिए अगर वो पहुंच गई तो फिर मसला टेढ़ा हो जाएगा। इमरान ने कहा, तो आप जल्द अज जल्द फ्लैट छोड़ दें, वो खुद ही वापस चली जाएगी। Black 0 ने इस बार अपने असल लहजे में कहा, तुम्हारा मतलब है कि मैं बाथरूम भी न जाऊं, और जब सर सुल्तान अहम बात कर रहे हों तो मैं दफ्तर का बाथरूम तलाश करता फिरूं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो दूसरी तरफ से Black 0 बेख्तियार हंस पड़ा। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? Black 0 ने हंसते हुए कहा, अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि तुम मेरी जगह हो आओ। इमरान ने कहा, आपका मतलब है कि आपकी जगह मैं सर सुल्तान के ऑफिस चला जाऊं? Black 0 ने चौंक कर कहा, नहीं, सर सुल्तान के ऑफिस की बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब बाथरूम से था, इमरान ने जवाब दिया तो Black 0 बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ा। आपका मतलब है कि आपकी जगह मैं बाथरूम हो आऊं? Black 0 ने हंसकर कहा, हाँ, इसमें आखिर हर्ज ही क्या है, आखिर मैं तुम्हारा नुमाइंदा खसूसी हूँ, इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह काम कर सकता हूँ तो तुम भी मेरी जगह काम कर सकते हो, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, अगर आपकी तसल्ली इस तरह हो सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं, Black 0 ने हंसते हुए कहा। अरे हाँ, वाकई मसला तो तसल्ली का ही है, चलो फिर ऐसा करो कि जूलिया के फ्लैट पर फोन करो, अगर वो वहाँ मौजूद हो तो उसे कोई काम बता दो, और अगर वो वहाँ से रवाना हो गई है और फोन टैप से मालूम हो कि वो मेरे फ्लैट के लिए रवाना हुई है, तो फिर उसके यहाँ पहुँचने का अंदाजा करके यहाँ फोन करो और उसे वापस अपने फ्लैट पर जाने का कह दो, क्योंकि तुमने किसी भी वक्त उसे हिदायत देनी है, इमरान ने कहा। ओके, Black 0 ने कहा तो इमरान ने रिसीवर रखा और फिर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो उसी लम्हे कॉल बेल की आवाज सुनाई दी और इमरान सर हिलाता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कौन है? इमरान ने दरवाजा खोलने से पहले ऊंची आवाज में पूछा। मैं जूलिया हूँ, दरवाजा खोलो, बाहर से जूलिया की तेज और गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। वाह, इसे कहते हैं खुशनसीबी कि बाहर खुद चल कर आए और दरे दिल पर दस्तक भी दे दे। वाह, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा और उसके साथ ही दरवाजा खोल कर वो एक तरफ हट गया। ये तुमने क्यों खुश्क और सर्द लहजे में मुझसे बात की थी, बोलो, जूलिया ने अंदर दाखिल होते ही गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन उसका गुस्सा साफ मसनू महसूस हो रहा था और इमरान इसकी वजह जानता था कि उसके फिक्रे के बाद जूलिया का असल गुस्सा बहरहाल गायब हो ही जाना था। मिस जूलिया, मुलाकात के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसके बावजूद बाज़ोकात पापड़ खराब हो जाते हैं, बाज़ोकात ज्यादा बेले जाते हैं और बाज़ोकात सिरे से बेले ही नहीं जाते। बहरहाल इस बार पापड़ सही बेले गए हैं और तुम यहाँ आ गई हो, वरना न जाने हिजर की कितनी सदियां गुजर गई हैं, इमरान ने कहा तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। खुदा की पना, तुम तो औरतों से भी ज्यादा बोलते हो, क्या ये बात इस मजमून में नहीं लिखी गई थी जिसे तुम पढ़ रहे थे, जूलिया ने हंसते हुए कहा। लिखी हुई थी, इमरान ने दरवाजा बंद करके सिटिंग रूम की तरफ जाते हुए कहा। क्या लिखा हुआ था, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लिखा हुआ था कि अगर खवातीन को खामोश कराना हो तो उनकी तारीफ शुरू कर दी जाए, चाहे वो कैसी ही क्यों ना हो, बस तारीफ सुनते ही वो बोलना भूलकर शर्माना शुरू कर देती हैं, इस तरह मजीद समा खराशी से निजात मिल जाती है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो तुम इसलिए मेरी तारीफ कर रहे थे, क्यों, जूलिया ने एक बार फिर गुस्से से फुनकारते हुए कहा। ओह, वो तो मैं मजमून की बात कर रहा था, अब बेचारे मजमून निगार की किस्मत कि उसे कोई खूबसूरत खातून मिली ही नहीं होगी, और न उसके बजाय ये लिखता कि अगर खूबसूरत खातून के सामने सच बोला जाए तो फिर वो खामोश हो जाती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गया। और जूलिया उसकी बात का मतलब समझ कर बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी, उसका चेहरा उसकी अंदरूनी मुसरत से खिल उठा था। ये सुलेमान कहाँ है, अचानक जूलिया ने चौंक कर कहा। वो मार्केट गया है और काफी देर से गया हुआ है, इमरान ने जूलिया की बात का मतलब समझते हुए कहा, क्योंकि जूलिया को अब ख्याल आया था और चूंकि इमरान ने खुद ही दरवाजा खोला था इसलिए लामहाला सुलेमान फ्लैट पर मौजूद नहीं था। क्यों, इतनी देर वो क्यों लगाता है मार्केट में, दो आदमियों के लिए अब इतनी खरीदारी तो ना करनी पड़ती होगी उसे, जूलिया ने कहा। खरीदारी, काश ये लफ्ज कभी हकीकत का रूप धार सकता। इमरान ने एक तवील और हसरत भरा सांस लेते हुए कहा, क्या मतलब? मार्केट जाने का मतलब तो खरीदारी करना ही होता है, जूलिया ने चौंक कर कहा। खरीदारी नकद रकम से की जाती है, उधार मांगने को खरीदारी नहीं कहा जा सकता। दुकानें घूमना पड़ती हैं, फिर कोई रहम खा कर उधार चीज दे देता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो जूलिया बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। अब तुम्हारा ये ड्रामा काफी पुराना हो गया है, इसलिए मेरी मानो तो इसे छोड़ दो और कोई और बात करो, जूलिया ने हंसते हुए कहा। ओह, इसका मतलब है कि आखिरकार तनवीर कामयाब हो ही गया, इमरान ने इंतहाई अफसरदा से लहजे में कहा। उसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई अफसरदगी के तासुरात उभर आए थे। क्या मतलब? ये तनवीर की कामयाबी और तुम्हारी अफसरदगी का क्या मतलब है? जूलिया ने हैरान होकर कहा। तुम खुद ही मशवरे दे रही हो कि मैं जो कुछ पुराना हो गया है उसे छोड़ दूं, इसका मतलब है, मतलब साफ है कि तनवीर के लिए मैदान खाली हो जाएगा, इमरान ने कहा तो जूलिया बेख्तियार उछल पड़ी। मैंने ड्रामे की बात की थी और तुम उसे कहां से कहां ले गए हो। नॉनसेंस, जूलिया ने गुस्से लहजे में कहा। जिंदगी खुद एक ड्रामा है मिस जूलिया, इमरान ने कहा, लेकिन इससे पहले कि जूलिया कोई और जवाब देती फोन की घंटी बज उठी और इमरान समझ गया कि ब्लैक जीरो की कॉल होगी। इमरान ने रिसीवर उठा लिया और साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। पुराना ड्रामेबाज अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ, तुम अभी तक वहीं मौजूद हो जबकि मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की इंतहाई गुस्सीली आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही रابطہ खत्म हो गया। लो सुनो, इन बुजुर्गों को भी यही मौका मिलता है बुलाने का। अब तुम बताओ, जूलिया इतनी तवील मुद्दत के बाद फ्लैट पर बाहर आई है तो कौन कम वक्त बाहर को छोड़कर बूढ़े टुंड मुंड दरख्तों को देखना पसंद करेगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों बुला रहे हैं वो तुम्हें? उन्हें तुमसे क्या काम पड़ सकता है, जूलिया ने कहा। पहले फोन आया था कि उन्होंने मेरे लिए कोई लड़की देखी है और बातचीत भी कर ली है, इसलिए अब मुझे वो बड़े दिखवे के लिए साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन तुम जानती हो कि मैं तो यक के दरगीर और मोहकम गिर के फलसफे का कायल हूँ, यानी एक दरवाजा पकड़ो और मजबूती से पकड़े रखो, इसलिए मैंने ऊं आ करके टाल दिया था, लेकिन उन्होंने फिर फोन कर दिया, इमरान ने कहा। नहीं, कोई और बात होगी, मुझे मालूम है, और तुमने लिबास भी बदला हुआ है, इसका मतलब है कि अगर मैं लेट हो जाती तो तुम जा चुके होते। बताओ क्यों बुला रहे हैं वो तुम्हें, सच सच बताओ, जूलिया ने कहा। सच सच बता दूं, लेकिन सोच लो, एक बुजुर्ग का कौल है कि सच बोलने से अलाव भड़क उठते हैं, आतिश फिशा फट पड़ते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है, अगर सच सुनने वाले को सच सुनने का हौसला ना हो, इमरान ने कहा। लेकिन इससे पहले कि जूलिया उसकी बात का कोई जवाब देती, टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। मालूम होता है कि सर सुल्तान सच बोलने पर मजबूर कर ही देंगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सच बोलने के लिए तैयार, अली इमरान, MSc, BSc, ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। X2, दूसरी तरफ से मखसूस आवाज सुनाई थी तो इमरान के साथ साथ जूलिया भी चौंक पड़ी। सॉरी जनाब, एक बार सच बोलने का हौसला नहीं हो रहा था, आप टू यानी दो बार कह रहे हैं, फिर सिर्फ अलाव ही नहीं भड़केंगे, आतिशफिशा ही नहीं फटेंगे, बल्कि कयामत बर्पा हो जाएगी, इमरान ने कहा। जूलिया पहुंच गई है तुम्हारे फ्लैट पर या नहीं? क्योंकि उसने अपने फ्लैट पर टेप में फोन के टेप पर पैगाम छोड़ा है कि वो तुम्हारे फ्लैट पर जा रही है, दूसरी तरफ से X2 की आवाज सुनाई दी। वही तो मुझे सच बोलने पर तैयार कर रही है, अब आप मुझे बताएं, क्या वाकई मुझे अब सच बोल देना चाहिए, इमरान ने कहा। रिसीवर जूलिया को दो, दूसरी तरफ से पहले से भी ज्यादा सर्द लहजे में कहा गया। लो सुनो, अब सुनो सच और सर धुनो, क्योंकि सच सुनने के बाद आदमी सर ही धुन सकता है, कपास तो नहीं धुन सकता, इमरान ने कहा और रिसीवर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। जूलिया बोल रही हूँ सर, मैं अभी यहाँ पहुंची हूँ, जूलिया ने कहा। तुम वापस अपने फ्लैट पर जाओ और तमाम मेम्बरान को फोन करके उन्हें भी अपने अपने फ्लैट में रहने की हिदायत करो, मैं जल्द ही तुम्हें जरूरी हिदायत दूंगा, दूसरी तरफ से सर्द लहजे में कहा गया। यस सर, लेकिन क्या ये हिदायत इमरान के लिए नहीं है सर, जूलिया ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। इत्तला सर सुल्तान के पास पहुंची है, इसलिए मैंने सर सुल्तान को भी कह दिया है कि इत्तला वो इमरान के हवाले कर दें, और इमरान को भी हुक्म दे दिया गया है कि वो जल्द अज जल्द सर सुल्तान के ऑफिस पहुंच जाए, ब्लैक जीरो ने कहा। ओह सर, मेरी मौजूदगी में अभी सर सुल्तान का फोन आया था, वो इमरान को जल्द अज जल्द अपने ऑफिस पहुंचने का कह रहे थे, लेकिन इमरान के अंदाज से तो यही लगता है कि जैसे वो वहां जाने का इरादा ही नहीं रखता, जूलिया ने जल्दी से कहा। तो मेरी हिदायत पर अमल करो, अगर इमरान ने मेरी हिदायत की खिलाफ वर्जी की तो इसका इबरतनाक नतीजा भी इसे खुद ही भुगतना पड़ेगा, دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کیا ہوا، بیٹھو، ایک تو تم فلیٹ پر آتی ہی نہیں اور اگر آتی ہو تو ساتھ ہی ساتھ کسی ممبر کو لے آتی ہو، اس طرح حالے دل تمہیں سنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اب اگر خوش قسمتی سے اکیلی آ ہی گئی ہو تو بیٹھو، یہ چیف اور سر سلطان تو شاید آپس میں ہم دونوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ بیٹھو، عمران نے کہا۔ شٹ اپ، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو، تم نے فوری طور پر سر سلطان کے آفس پہنچنا ہے۔ چلو اٹھو، جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ چلا جاؤں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، نہ سر سلطان کہیں بھاگے جا رہے ہیں اور نہ میں۔ تمہارے چیف کے سر پر تو ہر وقت کام ہی کا بھوت سوار رہتا ہے، نہ خود آرام کرتا ہے اور نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں کہہ رہی ہوں اٹھو اور چلو، چیف بغیر کسی وجہ کے ایسی ہدایات نہیں دیتا، اٹھو چلو، جولیا نے اور زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب واقعی سچ بتانا پڑے گا، تو پھر سن لو، سچ یہ ہے کہ میری جیب خالی ہے، کار میں پیٹرول نہیں ہے، اس لیے آغا سلیمان پاشا کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ جو سامان ادھار لے کر آئے گا اسے یہاں کسی اور دکان پر آدھی قیمت پر فروخت کرا کر کم از کم 2-4 لیٹر پیٹرول کا بندوبست کروں گا، پھر جاؤں گا۔ ویسے کیسے چلا جاؤں، عمران نے بڑے مسمے سے لہجے میں کہا۔ چلو میں تمہیں سینٹرل سیکریٹریٹ چھوڑ کر آگے چلی جاؤں گی، چلو، جولیا نے بھننائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں سر سلطان تک پہنچ ہی نہ سکوں، کیونکہ تم نے تو مجھے سینٹرل سیکریٹریٹ سے باہر ڈراپ کر دینا ہے، اور میں کار سے اتر کر پیدل جوتیاں چٹکھاتا سینٹرل سیکریٹریٹ کے گیٹ پر پہنچوں گا تو کیا وہ مجھے اندر جانے دیں گے؟ ہرگز نہیں، وہاں بھی کار والے کو سلام کیا جاتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہیں رقم دی جائے گی پھر تم جاؤ گے؟ بولو کتنی رقم چاہیے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوری، چنگیزی خون عورتوں سے رقم نہیں لیا کرتا، ورنہ تو اما بی سے مجھے وہ کچھ مل سکتا ہے کہ میں پورے پاکیشیا کا شہزادہ بن کر زندگی گزار سکتا ہوں، اس لیے تمہارا شکریہ، تم جا سکتی ہو، عمران نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، جب چیف تمہیں سزا دے گا پھر پتا چلے گا، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور سٹنگ روم کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ارے ارے رکو، میری بات سنو، ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، عمران بھی اس کے پیچھے بڑھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ جولیا نے راہداری میں پہنچ کر مڑتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو، میری کار اور اپنی کار کو 2 چین کر کے سینٹرل سیکریٹریٹ تک پہنچا دو، اور اس طرح کم از کم انہیں یہ تو معلوم ہو ہی جائے گا کہ میں کار میں آیا ہوں، عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ چلو ٹھیک ہے، تم کسی طرح پہنچو تو صحیح سر سلطان کے پاس، نہ جانے کس قدر اہم مسئلہ ہے، جولیا نے کہا۔ اہم مسئلہ کیا ہونا ہے، ان بوڑھے لوگوں کو اس بڑھاپے میں معمولی سا مسئلہ بھی اہم محسوس ہونے لگتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سر سلطان بے حد سنجیدہ اور ذمہ دار آفیسر ہیں، سمجھے، اس لیے سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، جولیا نے فلیٹ کا دروازہ کھول کر باہر آتے ہوئے کہا۔ اس لیے میں نے تو انہیں بوڑھا کہا ہے، سنجیدگی اور ذمہ داری دونوں ہی بڑھاپے کی نشانیاں ہوتی ہیں، عمران نے سیڑھیاں اترتے ہوئے باقاعدہ دلیل دے کر کہا، اور جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ تم ٹھہرو، میں گیراج کھول کر اپنی کار کو دھکیل کر باہر لاتا ہوں، پھر اسے 2 چین کریں گے، عمران نے کہا اور گیراج کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے کیا تم سچ کہہ رہے ہو، کیا واقعی تمہارے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، اور اب تو میں اس کا عادی ہو گیا ہوں، اس لیے رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا اور جلدی سے گیراج کھول کر اندر داخل ہو گیا، اور پھر جولیا کی آنکھیں یہ دیکھ کر حیرت سے واقعی پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ عمران واقعی اپنی انتہائی قیمتی اور نئے ماڈل کی اسپورٹس کار کو دھکیلتا ہوا باہر لا رہا تھا۔ جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران کار باہر نکال کر واپس مڑا اور اس نے گیراج بند کر دیا، پھر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے کار اسٹارٹ ہو گئی۔ ویری سوری مس جولیا، تم اپنی کار کسی اور کار سے 2 چین کر لینا، کیونکہ خواتین کی مدد مرد حضرات فوراً کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور مجھے جلدی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، خدا حافظ، عمران نے کھڑکی کا شیشہ ہٹا کر جولیا سے کہا، اور دوسرے لمحے زن کی آواز سے اس کی کار تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ عمران سائڈ مرر میں جولیا کا غصے کی شدت سے پھٹ پڑنے والا چہرہ کافی دور تک دیکھتا رہا۔ مجبوری ہے مس جولیا، واقعی بہت جلدی ہے، ورنہ میں خود تمہاری مدد کرتا، عمران نے اس طرح بڑبڑاتے ہوئے کہا جیسے جولیا تک اس کی آواز پہنچ رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ سینٹرل سیکریٹریٹ پہنچ گیا۔ اوہ عمران صاحب، آپ نے آنے میں کافی دیر کر دی ہے، صاحب انتہائی شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، عمران براہ راست سر سلطان کے آفس میں جانے سے پہلے جیسے ہی ملحقہ پی اے کے کمرے میں داخل ہوا تو پیے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اسی لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں، تمہیں اگر خطبہ نکاح آتا ہے تو مجھے یاد کرا دو، مجھے تو نہیں آتا۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، خطبہ نکاح کیا مطلب؟ پیے جو عمران کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، صرف ایک ہی موقع ایسا ہوتا ہے جب آدمی انتہائی بے چین ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے نکاح کا موقع۔ وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد نکاح ہو جائے تاکہ مقامی فلموں والے منظر سے بچ سکے کہ کوئی صاحب مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اور ہاتھ میں بندوق پکڑے آ کھڑے ہوں اور یہ کہیں کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، اور پھر واقعی نکاح نہیں ہوتا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پیے بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اطمینان سے جا سکتے ہیں، پیے نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے، اب کم از کم تمہارا صاحب مجھ پر غصے تو نہیں ہوگا۔ میں کہہ دوں گا کہ آپ کے پیے نے کہا تھا کہ اطمینان سے جاؤ، اور ظاہر ہے اطمینان سے آنے جانے میں وقت تو بہرحال لگتا ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا، اور پیے ایک بار پھر ہنس پڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے آفس میں داخل ہوتے ہی انتہائی خوشی و خضوع سے سلام کرتے ہوئے کہا، تم اب آئے ہو جبکہ مجھے ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے تمہارا انتظار کرتے ہوئے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں بیکار اور فارغ رہتا ہوں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہوتا؟ سر سلطان جو اپنے آفس میں باقاعدہ ٹہل رہے تھے یک لخت غصے سے پھٹ پڑے، جناب مسلمان کو کتنا ہی کام کیوں نہ ہو اور وہ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، بہرحال وہ سلام کا جواب تو ضرور دیتا ہے، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ سوری، مجھے تم پر دراصل شدید غصہ آ رہا تھا، میں نے جتنی جلدی تمہیں آنے کا کہا تھا تم نے اتنی ہی دیر لگا دی، سر سلطان نے قدر شرمندہ سے لہجے میں کہا اور پھر کرسی پر آ کے بیٹھ گئے۔ پہلے سلام کا جواب دیں پھر کوئی اور بات ہوگی، عمران نے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سر سلطان نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کا غصہ واقعی جھاک کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ ہاں اب جتنا جی چاہے غصہ کر لیجئے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، عمران نے کہا۔ کیوں، کیا مطلب؟ سر سلطان نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں شاید عمران کی اس بات کی سمجھ نہ آئی تھی، آپ نے مجھے سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکت کی دعائیں دی ہیں، اور جو دعائیں دیتا ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، عمران نے سلام کا مطلب بتاتے ہوئے کہا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، واقعی ایسا ہی ہے، بہرحال یہ خط پڑھو، سر سلطان نے کہا، اور جیب سے ایک لفافہ نکال کر انہوں نے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے لفافہ سر سلطان کے ہاتھ سے لیا اور پھر اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ لفافے پر پاکیشیہ کی بحریہ کا مخصوص سرکاری نشان موجود تھا، لیکن اور کچھ لکھا ہوا نہ تھا۔ عمران نے لفافے میں سے کاغذ نکالا اور پھر اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ کاغذ پاکیشیہ بحریہ کا سرکاری کاغذ تھا، اور یہ خط بحریہ کے ایک اعلیٰ افسر کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ عمران جیسے جیسے اسے پڑھتا گیا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ پورا خط پڑھ کر اس نے خط کو لفافے سمیت میز پر رکھ دیا۔ سی ایگل کیا ہے جسے چرانے کی کوشش کی گئی ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاکیشیا کے سائنسدانوں نے طویل محنت کے بعد ایک ایسی آبدوز تیار کی ہے جسے مستقبل کی آبدوز کہا جاتا ہے۔ اس کی ساخت، اس کی مشینری اور اس میں نصب آلات ایسے ہیں کہ اس جیسی آبدوز شاید ایکریمیا کے پاس بھی نہ ہو، اور شاید ابھی انہیں ایسی آبدوز بنانے کا خیال تک نہ آیا ہو۔ بچوں سمجھ لو کہ اس ایک آبدوز کے بعد پوری دنیا کے سمندروں پر پاکیشیا بلا شرکت غیر حکومت کر سکتا ہے۔ اس آبدوز کو کسی صورت بھی تباہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی بیکار۔ اس آبدوز کے ذریعے بڑے سے بڑے جنگی جہاز کو میلوں دور سے تباہ کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ سمندر کی تہہ سے آسمان کی انتہائی بلندیوں پر اڑنے والے جنگی ہوائی جہاز کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس آبدوز کو کوئی خلائی سیارہ بھی چیک نہیں کر سکتا۔ یہ آبدوز ابھی حال ہی میں تیار ہوئی ہے، اور ابھی اس پر تجربات کیے جا رہے ہیں، اور اس کی حفاظت پاکیشیا کے ایٹمی مراکز سے بھی زیادہ سختی سے کی جا رہی ہے، تاکہ اس آبدوز کے متعلق کسی دوسرے ملک، خاص طور پر سپر پاورز کے کانوں تک بھنک بھی نہ پہنچ سکے۔ اس آبدوز کے بارے میں تجربات پاکیشیا کے دور دراز ساحلی علاقے پاری میں کیے جا رہے ہیں۔ اس کو تیار بھی وہاں دلدلی علاقے میں بنائی جانے والی ایک خفیہ فیکٹری میں کیا گیا ہے۔ اس پورے علاقے کی اور اس سے ملحقہ سمندر کی انتہائی سختی سے حفاظت کی جاتی ہے۔ اس کی حفاظت نیوی انٹیلیجنس کے ایک گروپ کے سپرد ہے، جسے پہلے انتہائی خصوصی تربیت دلائی گئی ہے۔ اس گروپ کا سربراہ کمانڈر کہلاتا ہے، اور اس کمانڈر کا نام عادل ہے، اور یہ خط کمانڈر عادل کی طرف سے ہے۔ یہ خط اس کا ایک نمائندہ خصوصی مجھے دے گیا ہے، اور پھر اس نے مجھ سے فون پر بات کی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے اس بارے میں رپورٹ براہ راست صدر صاحب کو دی تھی، کیونکہ اس کام کے انچارج براہ راست صدر صاحب ہیں۔ صدر صاحب نے اسے کہا ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں، ताकि पाकेश या सीक्रेट सर्विस को इस बारे में इत्तला दी जा सके। उसने जो तफसील मुझे फोन पर बताई है उसके मुताबिक गुज़िश्ता रात अचानक तजुर्बाती इलाके में खुफिया सायरन बज उठे, जिस पर वहाँ हिफाजत के लिए मामूर अफराद ने चेकिंग की तो पता चला कि आबदोज को उसकी मखसूस जगह से चलाकर ले जाया जाने लगा था, लेकिन हिफाजती निजाम की वजह से सायरन बज उठे और आबदोज वहाँ से ले जाई न जा सकी। लेकिन बावजूद शदीद कोशिश और तलाश के वो ना ही चोर को ट्रेस कर सके हैं और ना ही उसका कोई मामूली सा सुराग भी लगा सके। लेकिन जिस अंदाज में आबदोज सी ईगल को इसकी मखसूस जगह से निकाला गया है वो इंतहाई हैरत अंगेज है। वहाँ मौजूद तमाम साइंसी ने हिफाजती निजाम को किसी खास मशीन के जरिए ऑफ कर दिया गया था। सिर्फ ये आखिरी हिफाजती निजाम ऑफ होने से बच गया था, वरना अगर इसे भी ऑफ कर दिया जाता तो आबदोज गायब हो जाती, और एक बार आबदोज निकल जाती तो फिर इसमें मौजूद मखसूस आलात की वजह से पाकेश या भी इसका सुराग न लगा सकता था। कमांडर आदिल का ख्याल है कि ये काम किसी इंतहाई मुनज्जम तंजीम या एजेंट्स का है, और अगर इन्हें ट्रेस करके पकड़ाना गया तो फिर ये वारदात किसी भी वक्त दोबारा हो सकती है। इसके फोन के बाद मैंने सदर मुमलिकत से राब्ता किया और उनसे इस आबदोज के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आबदोज पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई कीमती है, इसकी हिफाजत हर सूरत में होनी चाहिए। इसके बाद भी मैंने तुम्हें फोन किया है और मैं तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहा था कि तुम जल्द अज जल्द इस केस पर काम शुरू करो और इन लोगों को ट्रेस करो जिन्होंने ये हरकत करने की कोशिश की है, वरना पाकिस्तान को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंच जाएगा। सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदगी से तफसील बताते हुए कहा, यह तो वाकई इंतहाई अहम और संगीन मसला है और मुझे फौरन वहाँ पहुँचना होगा। वहाँ का नक्शा और मेरे वहाँ जाने का क्या इंतजाम होगा, इमरान ने भी इस बार इंतहाई संजीदगी से कहा। यह तो हो जाएगा, पहले तुम तो तैयार हो जाओ, सर सुल्तान ने कहा। आप कमाल करते हैं, इस कदर संगीन मसले पर मैं कैसे आंखें बंद कर सकता हूँ। मेरे तो वहमो गुमान में भी ना था कि आप मुझे इसलिए यहाँ बुला रहे हैं, वरना आपके रिसीवर रखने से पहले मैं यहाँ पहुँच जाता, इमरान ने कहा तो सर सुल्तान भी इख्तियार हंस पड़े। मुझे यही फिक्र था कि कहीं तुम इनकार ना कर दो, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आप सीगल की खसूसियात ना बताते तो वाकई मेरा जवाब यही होता कि पहले उसे चोरी होने लेने दीजिए, फिर उसे तलाश कर लेंगे, इमरान ने कहा तो सर सुल्तान एक बार फिर हंस पड़े। इसके साथ ही उन्होंने रिसीवर उठाया और फोन के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस करके उन्होंने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया और फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। सुल्तान बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी वजारत खारजा, सर सुल्तान ने बावकार लहजे में कहा। यस सर, मैं कमांडर आदिल बोल रहा हूँ जनाब, इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा बेहद मुअद्दबाना हो गया था। कमांडर आदिल, मैंने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ को दरख्वास्त की है किसी एक गल को चुराने की कोशिश करने वालों को ट्रेस किया जाए। उन्होंने मेहरबानी फरमाते हुए मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली है और अपने नुमाइंदे खुसूसी अली इमरान को मेरे पास भेज दिया है। अली इमरान साहब वहाँ फौरी तौर पर पहुँचना चाहते हैं, आप बताएं कि वो कहाँ और किस तरह पहुँचे, और ये भी बता दूं कि आप सब ने उनसे मुकम्मल तआवुन करना है, क्योंकि अगर उन्होंने अदम तआवुन की मामूली सी शिकायत भी चीफ ऑफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को कर दी तो आप मुझे भी अपनी सीट छोड़नी पड़ जाएगी, सर सुल्तान ने कहा तो इमरान उनकी बातें सुनकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। सर, मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ के अख्तियारात से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसलिए आपको कोई शिकायत ना होगी। कितने आदमी आएंगे सर, उसी तरफ से कमांडर आदिल ने कहा। तुम खुद चीफ के नुमाइंदे खुसूसी अली इमरान से बात कर लो, सर सुल्तान ने कहा और रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, हकीर फकीर पुर तकसीर बंदा नादान हेच मदान अली इमरान MSc BSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने रिसीवर लेते ही बोलना शुरू कर दिया तो सर सुल्तान का चेहरा गुस्से से बिगड़ने लगा। जी जी, मैं कमांडर आदिल बोल रहा हूँ जनाब, दूसरी तरफ से कमांडर आदिल की बौखलाई हुई सी आवाज सुनाई दी। उसके शायद तसव्वुर में भी ना था कि जिस चीफ के अख्तियारात की बात हो रही है उसका नुमाइंदा खुसूसी इस अंदाज में बात करेगा। कमांडर आदिल, इस इमरान की मजाही बातों का नोटिस ना लेना, ये इसकी फितरत है। ये इंतहाई संजीदा तरीन मौकों पर भी मजाक करने से इस तरह की बातें करने से बाज नहीं आता, सर सुल्तान ने इमरान के हाथ से अचानक रिसीवर झपट कर खुद बात करते हुए कहा। जी जी जनाब, कमांडर आदिल मजीद बौखला गया था, उसकी शायद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। हेलो कमांडर आदिल, आप तक पहुंचने के लिए क्या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो सकता है या मुझे अपनी कार में आना होगा, क्योंकि मैं जल्द अज जल्द पहुंचना चाहता हूं और मेरे साथ मेरी एक सेक्रेटरी और एक साथी होगा, मुझ समेत 3 अफराद होंगे, इमरान ने रिसीवर लेते हुए इस कदर संजीदगी और बावकार लहजे में कहा कि सर सुल्तान का चेहरा एक बार फिर गुस्से से बिगड़ता चला गया। जाहिर है इमरान की इस तरह संजीदगी का मतलब था कि सर सुल्तान ने अभी जो कुछ कहा है वो गलत था। जनाब आप हेलीकॉप्टर पर तशरीफ ला सकते हैं, हम हिफाजती निजाम ऑफ कर देंगे जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। कहाँ पहुँचना होगा तफसील से बताएं, इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। जनाब आप बंदरगाह से शुमाल की तरफ परवाज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पारी का दलदली इलाका आपको दूर से नजर आएगा। ये बंदरगाह से जमीनी फासले के हिसाब से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है, कमांडर आदिल ने कहा। मैंने पारी का इलाका देखा हुआ है लेकिन ये तो इंतहाई वसी और अरीज इलाका है, हमें कहाँ उतरना होगा, इमरान ने कहा। जनाब पारी के दरमियान में हमारी फैक्ट्री मौजूद है, आपके हेलीकॉप्टर को हम इशारा कर देंगे, कमांडर आदिल ने कहा। किस किस्म का इशारा, सीटी बजाएंगे या आंख मारकर इशारा करेंगे, इमरान ने अचानक कहा तो सर सुल्तान बेख्तियार उछल पड़े। जी जी मेरा मतलब है कि लाइट से इशारा कर दिया जाएगा, कमांडर आदिल एक बार फिर गड़बड़ा गया। आपके पास ट्रांसमीटर तो होगा, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। अपनी फ्रिक्वेंसी बताएं, मैं आपको कॉल करके मजीद तसल्ली कर लूंगा, इमरान ने कहा तो कमांडर आदिल ने फ्रिक्वेंसी बता दी। ओके हम पहुंच रहे हैं, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। आप खामखा नाराज हो रहे हैं जनाब, ये बड़ा संगीन और अहम मसला है इसलिए मजबूरन मुझे संजीदा होना पड़ा था, इमरान ने सर सुल्तान के बोलने से पहले कहा। फिर तुम पटरी से क्यों उतर गए थे, सर सुल्तान ने कहा। अब आप खुद सोचें, मिस जूलिया जो बतौर सेक्रेटरी मेरे साथ जाएगी और वो बहरहाल खातून है और वो कमांडर साहब कह रहे थे कि वो इशारा कर देंगे, इसलिए मजबूरी थी कि उनसे पूछा जाए वरना मामला पुलिस तक भी पहुंच सकता था। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी खातून को किस कदर हुकूक हासिल है, इमरान ने जवाब दिया तो सर सुल्तान भी इख्तियार हंस पड़े। बहरहाल ठीक है, अब तुम्हारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपना ही खून जलाना पड़ेगा, सर सुल्तान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जब भी ऐसा मौका आए आप किसी खैराती अस्पताल चले जाया करें, अल्लाह जजा देने वाला है, इमरान ने उठते हुए कहा। अस्पताल चले जाया करूं, अल्लाह जजा देगा, क्या मतलब, सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा। खून जलाने के बजाय बेहतर है दो चार बोतलें अतिया के तौर पर दे दिया करें, किसी बूढ़े का ही भला हो जाएगा, इमरान ने कहा तो सर सुल्तान भी इख्तियार खिलखिला कर हंस पड़े। नाराग के इंतहाई शानदार होटल मेगानो के बेहतरीन अंदाज में सजे हुए हॉल के एक कोने में मौजूद टेबल पर क्राउन बैठा हुआ था। उसके सामने एक और नौजवान कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो दोनों शराब पीने और बातें करने में मसरूफ थे। पिछले दिनों तुम नाराग से गायब थे, क्या बात थी, क्या तफरी करने गए थे या कोई मिशन था, सामने बैठे हुए नौजवान ने अचानक कहा तो एक क्राउन बेख्तियार मुस्कुरा दिया। एक अहम मिशन पर पाकिस्तान गया हुआ था, क्राउन ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो नौजवान बेख्तियार उछल पड़ा, उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। पाकिस्तान मिशन पर, लेकिन ये कैसे मुमकिन है, नौजवान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। क्यों मुमकिन है क्यों मुमकिन नहीं, क्या मतलब, क्राउन ने हैरान होते हुए कहा। मैन हेडक्वार्टर ने पाकिस्तान में किसी भी मिशन से तमाम सेक्शन हेडक्वार्टर्स को सख्ती से मना कर रखा है, इसलिए कह रहा था, नौजवान ने जवाब दिया। हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है लेकिन ये मिशन हेडक्वार्टर की खुसूसी इजाजत से मुकम्मल किया गया है, क्राउन ने शराब की चुस्की लेते हुए कहा। मुकम्मल भी हो गया इतनी जल्दी, नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ तुम जानते हो कि क्राउन किस अंदाज में काम करता है, क्राउन ने बड़े फाखराना लहजे में कहा। लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की मौजूदगी में इतनी जल्दी काम का हो जाना इंतहाई मुश्किल है, नौजवान ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को तो मालूम ही नहीं हो सका कि क्या हो गया है और किस तरह हो गया है, और वो लाख सर पटकते रहे उन्हें कयामत तक मालूम नहीं हो सकता, क्राउन ने जवाब दिया। वेरी गुड, ये हुई ना बात, फिर तो तुमने कारनामा सर अंजाम दिया है, क्या मिशन था, नौजवान ने कहा। सॉरी टॉम, ये मेरे सेक्शन का सीक्रेट है, क्राउन ने जवाब देते हुए कहा। अरे सेक्शन का क्या सीक्रेट होता है, तुम्हें तो मालूम है कि मेरा ताल्लुक भी इसी तंजीम से है जिससे तुम्हारा है, नौजवान जिसे टॉम के नाम से पुकारा गया था ने मुंह बनाते हुए कहा। वो तो ठीक है लेकिन सॉरी टॉम, मेरा ताल्लुक सी सेक्शन से है जबकि तुम्हारा ताल्लुक एयर सेक्शन से है, इसलिए मैंने कभी तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम अपने सेक्शन का सीक्रेट मुझे बताओ, और ये बात भी मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए बता दी है कि बहरहाल तुम्हारा ताल्लुक ब्लैक थंडर से ही है, इससे ज्यादा बहरहाल मैं कुछ नहीं बता सकता, क्राउन ने जवाब देते हुए कहा। ओह ठीक है, अच्छा उसूल है, मैं भी आइंदा ख्याल रखूंगा, टॉम ने इस बात पर सर हिलाते हुए जवाब दिया और क्राउन बेख्तियार हंस पड़ा। वैसे मुझे तो बेहद हसरत थी कि कम से कम उस इमरान से टकराव हो जाता, कि उसे भी मालूम हो जाए कि ब्लैक थंडर का सुपर टॉप एजेंट क्या होता है। अब तक वो सिर्फ सुपर और गोल्डन एजेंटों से ही टकराता रहा है, लेकिन क्या किया जाए, हेडक्वार्टर की शर्त ही यही थी कि उसे और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को मालूम न हो सके, क्राउन ने कहा तो टॉम बे अख्तियार हंस पड़ा। तुम फिक्र मत करो, अगर तुम वाकई मिशन मुकम्मल करके आ गए हो तो समझो कि इमरान से तुम्हारा टकराव अब नागुजीर हो चुका है, वो नाक की सीध में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, टॉम ने हंसते हुए कहा तो क्राउन बे अख्तियार चौंक पड़ा। क्या कह रहे हो, मैंने वहां सिरे से कोई निशान तक नहीं छोड़ा, इसलिए क्या उसे इल्हाम हो जाएगा, क्राउन ने कहा। तुम उसे जाती तौर पर नहीं जानते क्राउन, जबकि मैं उसे जाती तौर पर जानता हूँ। मैं ब्लैक एजेंसी में काम करता रहा हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक रिकॉर्ड सेक्शन से था, इसलिए मेरा उससे मुकाबला तो कभी नहीं हुआ। अलबत्ता उससे ताल्लुकात बहैसियत दोस्त रहे हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो किस अंदाज में काम करता है। उसे वाकई इल्हाम हो जाता है, लेकिन जब वो वजाहत करता है तो मालूम होता है कि बात जिसे इल्हाम समझा जा रहा था वो वाकई बेहद सीधी और साफ बात थी, टॉम ने जवाब देते हुए कहा। अगर ऐसा हुआ भी तो देखा जाएगा, उसे मालूम हो जाएगा कि क्राउन कौन है, क्राउन ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है, अलबत्ता मेरी तरफ से तुम्हें दोस्ताना ऑफर है कि अगर तुम्हें किसी भी लम्हे मेरी जरूरत पड़े तो मैं दोस्त की हैसियत से उसके खिलाफ तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा, टॉम ने कहा। लेकिन तुम तो अभी कह रहे थे कि उससे तुम्हारी जाती ताल्लुकात हैं, क्राउन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ है, लेकिन सिर्फ दोस्ताना हद तक। वो जानता है कि मैं ब्लैक एजेंसी के रिकॉर्ड रूम से मुतालिक हूँ, लेकिन एक बार उसने मुझसे भी गेम खेली है। उसने मेरा नाम इस्तेमाल करके नाजायज फायदा उठाया था, जिसकी बुनियाद पर मुझे ब्लैक एजेंसी से निकलना पड़ा, जिसका मुझे काफी अरसे तक मलाल रहा। मैंने उससे शिकायत भी की थी, लेकिन उसने परवाना की और मैं काफी अरसे तक परेशान रहा। फिर मुझे एयर सेक्शन में काम मिल गया, मैं इस काम का बदला लेना चाहता हूँ, टॉम ने कहा। ओके, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा, क्राउन ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। वैसे मैं भी यहाँ हूँ, अगर मुझे इमरान के बारे में इत्तला मिली तो मैं तुम्हें खुद ही इत्तला कर दूंगा, टॉम ने जवाब देते हुए कहा। ओके, आओ अब चलें, मैंने एक जरूरी मीटिंग में जाना है, क्राउन ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही टॉम भी उठकर खड़ा हो गया और फिर बिल अदा करने के बाद वो दोनों तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। कार खासी तेज रफ्तारी से मिलिट्री एयरपोर्ट की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ये इमरान की स्पोर्ट्स कार थी, इसलिए ड्राइविंग सीट पर इमरान खुद मौजूद था, जबकि साइड सीट पर जूलिया मौजूद थी और अगली सीट पर कैप्टन शकील मौजूद था। इमरान ने सर सुल्तान के ऑफिस से निकलकर एक पब्लिक फोन बूथ से ब्लैक जीरो को कॉल करके सूरत हाल बता दी थी और उसे कह दिया था कि वो मिलिट्री एयरपोर्ट फोन करके हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करे और जूलिया और कैप्टन शकील को उसके साथ जाने का कह दे। इसके बाद इमरान जूलिया के फ्लैट पर पहुंचा तो जूलिया चीफ की तरफ से फोन मिलने की वजह से तैयार बैठी थी और बगैर कुछ कहे वो खामोशी से इमरान की कार में आकर बैठ गई थी। फिर वहां से इमरान कैप्टन शकील के फ्लैट पर पहुंचा तो कैप्टन शकील भी तैयार था, क्योंकि जूलिया ने उसे भी फोन पर पैगाम दे दिया था और इस वक्त कार तेज रफ्तारी से मिलिट्री एयरपोर्ट की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। चूंकि मामला खास अहम और संगीन था, इसलिए इमरान के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। इमरान साहब, ये अचानक बैठे बिठाए कौन सा केस शुरू हो गया है, अचानक कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान भी अख्तियार चौंक पड़ा और दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर छाई हुई संजीदगी इस तरह से गायब हो गई जैसे मेकअप वॉश करके उसे करने से साफ हो जाता है, और अब उसके चेहरे पर वही पहले वाली शरारत भरी मुस्कुराहट और शगुफ्तगी नजर आने लगी। अगर तुम्हें बैठे बिठाए पर एतराज है तो समझो खड़े खड़ाए केस शुरू हो गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन केस है क्या ये तो बताओ, जूलिया ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। केस अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए फिलहाल केस ही नहीं है, सिर्फ इब्तदाई इंक्वायरी है, इमरान ने कहा। मतलब है कि मुजरिम नाकाम हो गए हैं अपने मिशन में, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, सर सुल्तान के पास यही इत्तला थी, इमरान ने जवाब दिया और फिर इसने खुद ही कमांडर आदिल की तरफ से खत और उस खत की जो तफसीलात सर सुल्तान ने बताई थी वो सारी दोहरा दी। सी ईगल चुराने की कोशिश की गई है, हैरत है कि वो कैसे इस हद तक कामयाब हो गए, कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या तुम्हें इस बारे में पहले से मालूम था, इमरान ने चौंक कर कहा। किस बारे में, कैप्टन शकील ने चौंक कर पूछा। सी ईगल के चुराने के बारे में, इमरान ने कहा। ओह नहीं इमरान साहब, अलबत्ता मुझे उस सी ईगल और इसके हिफाजती इंतजाम के बारे में इल्म था। आपको तो मालूम है कि मेरा ताल्लुक नेवी इंटेलिजेंस से रहा है, इसलिए अब भी मेरे दोस्त उस सेक्शन में हैं और अक्सर उनसे रابطہ होता रहता है। इसलिए मुझे ये मालूम था कि सीए गल क्या है और इसकी हिफाजत के क्या इंतजाम किए गए हैं। तफसील का तो मुझे इल्म नहीं और मैंने पूछी भी नहीं और ना मैंने पूछी है। अलबत्ता जो अहम हिफाजती इंतजाम किए गए थे उनके बारे में मुझे इल्म है और इन्हीं इंतजाम की वजह से सी ईगल को चुराना तो एक तरफ, उसकी तरफ किसी गैर मुतालिक आदमी का पहुंचना ही नामुमकिन था, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। तो जो मिशन हम मुकम्मल करते रहे हैं, क्या वहाँ हमारा मिशन सड़क पर कूड़े के ढेर पर पड़ा होता है? सीक्रेट एजेंटों का तो काम ही इन हिफाजती इकदाम को खत्म करना होता है, इमरान ने जवाब दिया। मेरा मतलब था कि ये काम इंतहाई मुश्किल था, कैप्टन शकील ने कहा। कैप्टन शकील की बात दुरुस्त है, इसीलिए तो मुजरिम नाकाम रहा है, लेकिन बहरहाल मुजरिमों का कोई ना कोई तो सुराग मिलना ही चाहिए था, जूलिया ने कहा। पार्ट नंबर 1 यहाँ मुकम्मल होता है।